الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، آج هم سورة كهف کا آیت نمبر 60 سے 82 کا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہمارا 16 سپارہ بھی شروع ہو جائے گا، اور آج کا لیسن بے حد امپورٹنٹ لیسن ہے، اور اس میں وہ باتیں ہیں جو کہ اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں. ایسی باتیں جو ہمیں ہماری پریکٹیکل لائف میں، اپنی روزمرہ زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، اور بدقسمتی سے بہت جلدی ہمیں بھول بھی جاتی ہیں. لہٰذا ان کو دہرانا، ان کو بار بار ان کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں. اسی وجہ سے ہر جمعے کو ہمیں یہ سورت پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور تاکہ ہم ان آیات کو جب بار بار پڑھیں گے تو ہمیں ریوائز ہو جائے ذہن میں کہ یہ ہمیں کیا میسیج دیتی ہیں. بہت ڈیپ آیات ہیں، بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک قصے سے ہمیں کچھ سمجھایا. جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ اس سورت میں چار قصص ہیں، چار قصے ہیں، اور آج ہم تیسرا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس قصے میں علم کے فتنے کی بات آئی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہیں پر آپ اس میں دولت کے فتنے کی بات دیکھیں گے، کہیں علم کے فتنے کی، کہیں حکومت کے فتنے کی، کہیں ایمان کے فتنے کی، مطلب ہر جگہ پہ فتنوں کی کو ایڈریس کیا گیا کہ ان فتنوں سے کیسے انسان ان کا مقابلہ کرے. اور علم کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے. دیکھیں، علم آزمائش ہے. فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش، امتحان. فتنہ وہ نہیں جو اردو میں بولتے ہیں کہ بڑے فتنہ ہے، بہت ہی سے، وہ نہیں ہے. عربک میں فتنہ کہتے ہیں امتحان کو. تو علم بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم سے نوازتا ہے، تو جیسے دولت سے نواز کے اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے اس دولت کے ساتھ، اسی طرح علم کو نواز کے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کا رویہ، اس کی بات چیت، اس کی ذہن کیسا بن جاتا ہے. کیا علم آنے کے بعد انسان میں عاجزی آئی یا وہ متکبر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو علم کی بھی ایک پوچھ ہے اللہ کے ہاں، علم کا بھی ایک سوال ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بہت بہت بڑے علم والے دو شخصیات کا ذکر ہے. علم کے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، ان کے سمندر ہیں سمجھ لیں. ان کی علم آنے کے بعد کیسی ان کی بات چیت تھی، ان کے کیسے کردار تھا، ان کا وہ کیسی پرسنالٹیز تھی. تو دیکھنا تو ہمیں آج ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، لیکن آج بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اکثر آپ فرعون کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں. سورہ بقرہ میں آپ جا بجا صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ، اب ایک بہت بڑے اللہ کے دشمن کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن بالکل آج ڈفرینٹ بات ہے، یا آج بالکل آپ ان کا ایک الگ روپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کہ सूरह कहफ में जो दो किस्से आए हैं, एक तो असहाबे कहफ का और एक जुलकरनैन का। ये दो किस्से तो ठीक है कि मुशरिकीन ने मक्का ने, जैसे आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि उन्होंने यहूदियों से जाके पूछा था कि हम इनसे क्या सवाल करें, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे उस लड़कों के बारे में पूछें जो गार वाले थे, गार वालों का किस्सा पूछें, और उस ट्रैवलर का पूछें जिसने ट्रैवल किया था पूरी जमीन के ऊपर, दुनिया पे ट्रैवल किया, उसका पूछें। तो मुशरिकीन मक्का ने ये मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का तो नहीं पूछा था, फिर ये किस्सा क्यों आया? और बाघ वाला भी नहीं पूछा था। लेकिन आप देखें, ब्रैकेट करके दो किस्से बीच में लाए गए और दोनों तरफ वो किस्से हैं जो उन्होंने सवाल किए थे, जबकि ये जो मिडल में दो किस्से हैं इनका सवाल नहीं किया गया था। तो हमें पता चलता है कि बाघ वाला किस्से में क्या है, माल का तकब्बुर, सरदारी का, अपनी हैसियत का, अपने स्टेटस का तकब्बुर है, जो कि मुशरिकीने मक्का में बहुत ज्यादा था, तो उनको सुनाई गई ये बात। और अब इल्म के तकब्बुर की बात है, और इल्म किसके पास था वहां पे? यहूदियों के पास, जो अपने इल्म पे बहुत नाज करते थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का को तो कुछ समझते ही नहीं थे, कहते थे हम अहले इल्म हैं, अहले किताब हैं। उनके पूछे बगैर ये किस्सा बताया गया, और वजह ये है कि उनको इस चीज को बावर कराया जाए, रियलाइज कराया जाए उनको कि देखो तुम्हारे नबी मूसा अलैहि सलाम इतने इल्म वाले हो के भी कितनी आजी रखते थे अपने अंदर, कि अपने से ज्यादा इल्म वाले के पास या एक और शख्सियत के पास, इल्म वाली शख्सियत के पास वो गए और उनके आगे आजी का इजहार किया, क्योंकि वो उनसे ज्यादा इल्म वाले थे, तो उनके आगे आजी का इजहार किया। और तुम क्या करते हो कि तुम उनके पैरोकार, उनके मानने वाले होने के बावजूद तुम अपने इल्म के साथ आजी नहीं बरतते। एक रसूल आ चुका है, तुम उसके पास जाके और हक को नहीं कबूल करते, उनकी इत्तेबा नहीं करते, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे ही पैगंबर हैं, देखो उनको कि उनके अंदर तो ये तकब्बुर नहीं था। आपको पता है यहूदियों ने अपने तकब्बुर की वजह से ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। तो याद रखें, इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर अगर उसके साथ आजी हो तब, अगर उसके साथ आजी नहीं है और उसके साथ तकब्बुर आ गया तो ये बहुत बड़ी आफत है, नेमत नहीं है फिर आफत है। तो बहुत जरूरी है कि जब हम इल्म लें तो साथ अपने आप को चेक करते रहें कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं आ गया। तो ये किस्सा, इसको कहते हैं मूसा और खदिर का किस्सा। गो के खदिर ये नाम कुराने पाक में नहीं आया, और यहाँ पे हम खिजर कहें, खौदेर कहें, आपको पता है ये एक ऐसा नाम है, वैसे इसका मतलब है ग्रीन, सरसब्जो शादाब, और ये उनका नाम नहीं था, ये उनका लकब था, इसलिए कि वो जहां जाते थे, जो इसी बंजर जमीन पे भी जाते थे, तो वो ग्रीन हो जाती थी, उनकी इतनी बरकत थी। उनके इस नाम की 10 प्रोनाउंसिएशंस हैं मुख्तलिफ, कहीं खिदर है, कहीं खुदर है, कहीं खिदर है, कहीं खौदीर है, तो सभी ठीक है, लेकिन ज्यादा मुफसरीन ने लिखा है कि खौदीर सही है। तो मूसा और खदीर अलैहिस्सलाम का ये एक किस्सा है, और ये किस्सा कैसे हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा वाज कर रहे थे, यानी कुछ खिताब कर रहे थे, अपने लोगों को खुतबा दे रहे थे, समझ लें ये खुतबा दे रहे थे। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए मूसा, क्या आपसे किस कौन सबसे बड़ा आलिम है? सबसे ज्यादा बड़ा इल्म वाला कौन है? तो जवाब दिया मैं। अब आपने इस जवाब में ये नहीं फरमाया कि वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है, तो उसकी बजाय कह दिया मैं। अब एक तरह से ये बात सही तो थी, इसलिए कि मूसा उस वक्त अल्लाह के नबी जमीन पर थे और अल्लाह के नबियों को जितना इल्म होता है वो किसी और को नहीं होता। तो जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ताला को उनका ये कलमा पसंद नहीं आया। क्यों? इसलिए कि देखिए, जो जितने ऊंचे स्टेटस का होता है ना, जो जितना इल्म वाला, जो जितना मर्तबे वाला अल्लाह के यहाँ होता है, उसकी छोटी सी गलती, छोटी सी खता, छोटी सी बात भी पकड़ी जाती है। जरा सी आप देखें, आबासा हुआ था वल्ला क्यों आई थी अब्दुल्ला इब्ने मकतूम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी तेरी चढ़ाई थी कि ये इस वक्त आ गए जिस वक्त मैं दूसरे सरदारों को पैगाम दे रहा हूँ, उनको कुछ समझा रहा हूँ। तो इस बात के ऊपर अल्लाह ताला ने सरजनिश फरमाई कि इतनी सी तेवरी भी क्यों चढ़ी, तो फौरन सूरत उतर गई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितना बड़ा मकाम है ना, जितना बड़ा दर्जा है, या जितना कोई इल्म वाला है, उससे एक्सपेक्टेशन भी उतनी है, उसका स्टैंडर्ड भी उतना ही हाई होना चाहिए। जैसे आप लोग अब कुरान के स्टूडेंट्स हैं, आपका कैरेक्टर, आपकी बातचीत, आपका अमल, आपके तौर तरीके डिफरेंट होने चाहिए दूसरों से। अगर आप और एक कुरान का इल्म ना रखने वाला बिल्कुल एक तरह के काम करते हैं, एक तरह का आपका रहन सहन, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, गुफ्तगू, हर चीज उसके बराबर है, तो आपने क्या पढ़ा? आपने इस इल्म से क्या फायदा उठाया? तो जैसे जैसे इंसान के पास इल्म आता है, उसके दर्जे ऊपर होते हैं, उसी तरह उसके अंदर एक चेंज भी आना चाहिए। उसी तरह उसको अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार, इखलाक, गुफ्तगू, हर चीज से उस पर पता चलना चाहिए कि उसके ऊपर असर है उस इल्म का। लिहाजा जब स्टैंडर्ड बुलंद होता है तो उतनी ही ज्यादा पूछ भी होती है इंसान की। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि मैं हूं, तो अल्लाह ताला को ये कलमा नहीं पसंद आया। उसी वक्त वही आई कि हमारा एक बंदा है जो आपसे ज्यादा इल्म वाला है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? तो हुक्म हुआ कि अपने साथ एक मछली ले ले, ये वो आपको बंदा मजमाल बहराइन में मिलेगा, यानी जहां पे दो समंदर जमा हो रहे हैं वहां मिलेगा। तो वो तो बहुत बड़ी जगह है जहां दो समंदर जमा हो रहे हैं, वहां पे कहाँ पे वो बंदा होगा? फरमाया, एक मछली साथ ले लें अपने पास, तोशादान में, यानी अपनी टोकरी में, बास्केट में, जैसे आप रखते हैं फूड। तो जहां वो मछली जिंदा हो जाए, गुम हो जाए, वहां वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने एक पता बताया। अब यहां पर आप इस सारी बात को नहीं पाएंगे और सीधा आपको जो हम आज की आयात पढ़ेंगे, सीधा ऐसे लगता है जैसे एक सीन है आपके सामने कर दिया, मिडल ऑफ द स्टोरी के अंदर आपको रख दिया गया। ये भी एक तरीका होता है और बहुत पावरफुल तरीका है कि आपको बजाय शुरू से ये सारा बताने के, एक मिडल में लाके एकदम आपके सामने एक सीन खुला है जिसके अंदर क्या है, मूसा अलैहि सलाम जा रहे हैं अपने एक नौजवान के साथ, गुलाम के साथ। एक्चुअली कौन है वो गुलाम, या कौन है वो साथी जिनके साथ मूसा अलैह सलाम सफर कर रहे हैं? वो है यूशा बिन नून। वो आपके स्टूडेंट भी थे, आपके खिदमत गुजार भी थे, उनको उन्होंने साथ लिया और चल पड़े हैं। अब आपको एक बात बताने की है, आयात तो बहुत इजी है, अगर आप इनको पढ़ भी लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इनके जो डेप्थ में जाना है ना वो बहुत जरूरी है। समझने की बात ये है कि मूसा अलैह सलाम को पहले आप खुद थोड़ा सा जहन में लेकर आए कि हैं कौन। मूसा अलैह सलाम वो अल्लाह के नबी हैं, जो पांच उलुल आजम पैगंबरों में से, यानी टॉप के टॉप मोस्ट जो पैगंबर है ना, वो फाइव है, उनमें एक मूसा अलैह सलाम है, छोटी बात नहीं है। सेकेंडली, मूसा अलैह सलाम वो पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह सुबहाना व ताला ने गवारा नहीं किया कि मैं किसी को बीच में लाऊं इनसे बात करने के लिए, डायरेक्ट मूसा अलैह सलाम से बात की है। सुभान अल्लाह, मूसा अलैह सलाम वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो किताब अता फरमाई जो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी, तौरात के बारे में आता है अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखी और एक ही दफा में उतारी। मूसा अलैह सलाम वो पैगंबर हैं जो कयामत के दिन नबी अलैह सलातो वसलाम के बाद सबसे बड़ी उम्मत को साथ लेकर आएंगे। तो सोचें कि अल्लाह ताला को मूसा अलैह सलाम कितने महबूब हैं और मूसा अलैह सलाम की क्या वैल्यू है अल्लाह के यहाँ। मूसा अलैह सलाम वो हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ दिया था और उनकी आंखों के सामने उनके दुश्मन को गर्क करके दिखाया था। अब वो मूसा जब सुनते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है, तो वो ये नहीं आगे से कहते सो व्हाट, सो व्हाट, अगर मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है सो व्हाट, मैं क्या करूं, आई डोंट केयर अगर मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है। क्योंकि इल्म का अगर इंसान में तकब्बुर आ जाए ना, तो वो ऐसे ही कहता है मैं खुद इतना इल्म वाला हूं, मुझे क्या। अब आप सोचिए, टॉप के किसी स्कॉलर को अपने जहन में लेकर आए जिसके हजारों स्टूडेंट्स हैं दुनिया के अंदर, और उस स्कॉलर को कह दिया जाए आपसे भी बड़े कोई स्कॉलर हैं जिनके पास आपको जाके इल्म लेना है, तो अगर तो उसके अंदर तकब्बुर होगा तो वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं जी, मेरे पास खुद इतना इल्म है, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी से जाके इल्म लेने की, ठीक है, मेरे पास खुद काफी है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फुर्सत और ना मैंने जाना। मूसा अलैहि सलाम हजारों नहीं, लाखों लाखों उनके पैरोकार थे, उनके उम्मती थे, उनके स्टूडेंट भी हो गए, मतलब जाहिर है मुअल्लिम भी होता है एक नबी अपने उम्मत का, तो इतने उम्मती हैं उनके लाखों जिनको लेकर वो चले थे। अब आप बताइए कि उसके बाद उनकी आजजी की इंतहा देखें, ये होती है इल्म के बाद इंसान जो आजिज होता है ना, ये होता है उसका रवैया, कि उनकी आजजी देखें कि नो सेकंड क्वेश्चन, या अल्लाह मैं कैसे उस आदमी को मिल सकता। ये होती है शान एक ऐसे इंसान की जो आजिज मिजाज हो, वो हमेशा इल्म का हरीस रहता है। ये निशानी है इस बात की, उनको कोई शर्म नहीं आती कि हाय मैं किसी से जाके अब मैं कुछ सीखूं, अब मैं खुद इतने पाए का रसूल हूं, मैं खुद सबसे नेक हूं और मैं अब जाके सीखना शुरू कर दूं, ये नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मूसा अलैह सलाम अब चल पड़ते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर क्या आता है। वा इद कौला मूसा ली फताहु, और जब कहा मूसा अलैह सलाम ने अपने नौजवान से, अब मैं इसलिए बार बार गुलाम नहीं कह रही, हालांकि फता से मतलब उनका गुलाम भी है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्द कहने से मना किया, गुलाम कहने से मना किया, यहाँ पे आ सकता था इज कौला ली अब्द ही, लेकिन अब्द कहना अपने गुलाम को मना है। आप सल्लम ने फरमाया कोई भी ना कहे या अब्दी या अमती, या मेरी लौंडी या मेरे गुलाम, बल्कि कहो या फताई, ए मेरे शागिर्द या नौजवान या मेरे खादिम। ओके, फता में ना नरमी है, तो वो कहते हैं अपने इन साथी थे, इसका मतलब है कि वो उनको साथ लेकर चलें, और चलते हुए उनको कह रहे हैं ला अबराहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैनी औ अमदियहु कुबा, मैं नहीं पलटूंगा, मैं नहीं फिरूंगा, नहीं यानी रुकूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक कि मैं पहुंच ना जाऊं उन दो दरियाओं के, समुद्रों के जमा होने की जगह, जैसे अल्लाह ताला ने बता दिया था कि मजमाल बहरीन पे वो मिलेगा बंदा, तो जब तक मैं मजमाल बहरीन में ना पहुंच जाऊं औ अमदिया हुकुबा, या मैं चलता ही रहूंगा बरसों बरसों मुद्दतों, जैसे मैंने आपको बताया हुक्म जो होता है 80 साल के लिए भी आता है, गैर मुअय्यन मुद्दत अनलिमिटेड सॉरी अनफिक्स्ड टाइम, जो टाइम फिक्स ना हो, यानी मैं चलता ही रहूंगा, मुद्दतों चलता रहूंगा, बहुत लंबे अरसे के लिए भी आता है। कितनी ज्यादा कमिटमेंट थी उनकी कि मैंने अब बैठना नहीं है, मैंने अब पलटना नहीं है, जब तक कि मैं उस बंदे को ना पालूं जिससे मैंने इल्म हासिल करना। सुभान अल्लाह, चाहे इसके लिए मुझे सदियों चलना पड़े, मुद्दतों चलना पड़े, कई हुक्म चलना पड़े। ये हुक्म, ये लफ्ज आया है कहीं और भी ना, 30th जुज में, वला बिसीना फीहा अहकाबा, वो भी हुक्म है ना, जहन्नमियों इतने हुक्म रहेंगे, कई हुक्म रहेंगे वो जहन्नम के अंदर। तो यानी मुद्दतों में चलता रहूंगा। इससे आप सोचें कि मूसा अलैहि सलाम की का एटीट्यूड क्या था इल्म लेने के मामले में, लापरवाही नहीं थी, एक कमिटमेंट के साथ, इतनी डेडिकेशन है कि मैं चलता ही रहूंगा। इससे उलमा कहते हैं कि इल्म हासिल जो करना चाहता है उसकी ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि उसमें कमिटमेंट हो। ये नहीं है कि लोग कहें हम कमिटमेंट करने से जी डरते हैं, हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहते। अगर कमिटेड ही नहीं है आप, अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन ही नहीं है, तो आप इल्म कैसे हासिल करेंगे? और उनके अंदर ये तलब होना, जबकि उनके पास खुद इतना ज्यादा इल्म है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब इंसान के पास खुद के पास होता है ना, एक तो बंदा वो है जिसके पास इल्म नहीं है, तो वो कहता चलो जी मैं किसी से सीखने जाता हूँ, एक बंदे पास खुद इतना इल्म है और वो फिर चल पड़ा है, इसके लिए बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसके अंदर तलब है, उसके अंदर डेडिकेशन है। और ये सबक यहूद के लिए भी था ना, कि तुम देखो तुम इस नबी के पास नहीं आते, तुम इनसे इल्म नहीं लेना चाहते, तकब्बुर करते, और तुम्हारे नबी कैसे थे? याद रखें, दो लोग इल्म नहीं ले सकते, एक वो जो शर्म खाता है, दूसरा वो जिसमें तकब्बुर होता है। तकब्बुर वाला इल्म नहीं ले सकता, और एक जिसमें शर्म भी बहुत होती है ना कि हाय लोग क्या कहेंगे कि मुझे आता नहीं, वो भी नहीं इल्म ले सकता। तो अब वो ये भी यहां से पता चलता है कि अपने जो साथी हैं, अपने खादिम हैं, उनको बता भी रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहां जहां पे मजमाल बहराइन है। इससे भी उलमा कहते हैं कि बाज दफा लोग अपने नौकर या खादिम को ये बताना पसंद नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो उनको इतना वो समझते नहीं है इस काबिल, लेकिन उन्होंने बताया। और दूसरे ये कि कहाँ पे था ये मजमाल बहराइन, बाज कहते हैं मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जहां पे मिलते हैं, बाज ने कहा कहीं और बाहर के, अब जहां पे भी है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो बहुत सारी रिवायात है इसमें, उसमें जाने की जरूरत नहीं। मगर एक बात समझ आती है कि जहां एक समुंदर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और जहां पे वो एंड होता है और दूसरा शुरू होता है, तो इससे पता चलता है कि बहुत कोई दूर की जगह की तरफ इशारा है। एक समुंदर जाहिर खत्म होना, दूसरा शुरू होना, तो ये सिंबलाइज करता है ना इस चीज को। और फिर ये बहुत एक जबरदस्त बात उलमा ने की कि सुभान अल्लाह, जहां दो समुंदर मिल रहे हो, तो दो समुंदर मिल रहे हैं वहां वो मिलेंगे, और वहीं ये दो इल्म के समुंदर मिलेंगे, पानी के समुंदर मिल रहे हैं, वही जगह सूटेबल हो सकती है दो इल्म के समुंदरों के मिलने की भी, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम का भी इल्म कोई कम नहीं और खदर अलैहि सलाम का इल्म भी कोई कम नहीं। तो मूसा अलैहि सलाम की अल्लाह ताला ने यहाँ पे आजी दिखाई है, अगर उनके अंदर तकब्बुर होता तो वो कभी भी ये बात सुन के कि उनसे बड़ा कोई और इल्म वाला है कभी ना निकलते। और ये भी ये बात समझने की है कि देखिए, इल्म के लिए इंसान के अंदर आजजी जरूरी है। अगर हम ये समझ के कहीं पढ़ने के लिए आते हैं कि जी मुझे तो बहुत आता है। बाज दफा ऐसे लोगों से मैंने सुना है, बाज हमारे पास एडमिशन लेते हैं, वो अपना आके तारुफ कैसे कराते हैं, मैं तो वैसे बहुत मुझे आता है, मैंने तो इतने कोर्स करे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी हुई हूँ, मैंने तो इतनी तफसीरें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, यहाँ पे भी देखती हूँ। तो अगर आप इस तरह का जहन रखते हैं और सोचते हैं कि आपको इल्म आ जाएगा और आप कुछ सीखने जा रहे हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। ऐसा इंसान क्या सीखेगा जिसमें इतनी एरोगेंस हो कि जी मुझे तो पहले ही बहुत आता है, मुझे तो पहले ही इतना कुछ इल्म है। तो वो यानी वो पहले बता रहा है कि मेरा बर्तन तो पहले भरा हुआ है, भरे बर्तन में क्या आएगा, ठीक है, बर्तन को खाली करना पड़ेगा ना। तो वो जो बता रहा है कि मेरे पास इतना इल्म पहले ही है, और इसी तरह ग्रुप्स में जाके बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी बहुत इल्म है, यानी अपने इल्म का रोब झाड़ना, अपने इल्म का तकब्बुर। तो ये चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जब इंसान के पास जितना इल्म आता रहता है, आता जाता है, उसके अंदर आजी आती है, अगर वो वाकई इल्म हासिल करना है। और अगर इल्म नहीं है ना, सिर्फ जहालत ही है, तो फिर तकब्बुर आएगा। जो उलमा कहते हैं, जो इंसान ये समझता है कि उसको सब कुछ आ गया, समझ लें कि वो जाहिल है, उसकी जहालत है उसके अंदर। यकीन जाने मैं अभी तक भी पढ़ती रही हूँ, इस साल तक भी मैंने कभी अपने किसी टीचर को नहीं बताया कि मैं कुछ पढ़ाती हूँ, या मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं, या मैं कोई इदारा चला रही हूँ, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे ही हमेशा पढ़ा है कि जैसे आज मैं पहली दफा आपसे पढ़ने के लिए आ रही, किसी को भी नहीं पता था। तो ये जरूरत नहीं होती कि हम जब कहीं जाएं तो हम वहां पे एडमिशन लेते हुए अपने पहले इल्म की धाक बिठाएं और हम ये बताएं कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, और मैं तो बस ऐसे ही चलते फिरते जरा आपको चेक करने आ गई, समझ जाएं कि आपने कुछ नहीं सीखा वहां पे। तो अब ये मूसा अलैह सलाम कि कमिटमेंट देख लें। अच्छा फिर कितना अरसा, ये नहीं कि अच्छा अब मैं इतना अरसा अपना लगा दूं, मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर दूं, मैं अपने इतनी पता नहीं कितना टाइम लगे, इसका मतलब है कि उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाके उनको वो मिलेंगे, खादिर अलैहि सलाम कहाँ पे मिलेंगे, कितना अरसा लगेगा। इसीलिए वो कहते हैं चाहे मैं चलता रहूं, मैं पलटूंगा नहीं जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं, और चाहे मुझे इसमें चलते रहने में मुद्दतें गुजर जाएं। और आज इल्म के हरीस का हाल ये है कि अभी एडमिशन भी नहीं लेते, कहते पहले हमें बताओगे ये खत्म कब होना, खत्म होने का बताओगे तो फिर हम आएंगे। यानी उनको पहले ये कि इख्तिताम का अभी शुरुआत हुई नहीं है, खत्म की पहले फिक्र है। मूसा अलैहि सलाम ने तो नहीं ये फरमाया कि मेरे तो ये कब सफर खत्म हो, कब मैं कहूंगा, कब आऊंगा, हाय मेरा तो इतना वक्त चला जाएगा, कितना वक्त मुझे लगाना पड़ेगा। और इमाम बुखारी कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने इल्म की खातिर सफर किया, और उनके बाद फिर आप मुहद्दिसीन, आप आइम्मा कराम उलमा को देखें, उन्होंने कितने सफर किए इल्म के लिए। तो वो देखते ही किसी को तब थे कि जब किसी ने सफर किया होता था इल्म के, कि पहले ऐसे तो नहीं है आराम से जैसे आप घर में अपने कंफर्ट में बैठ के पढ़ते हैं, ऐसी तो सहूलियात भी नहीं थी। एक एक इल्म के लेने के लिए, कहीं एक एक हदीस लेने के लिए उन लोगों को कितने सफर करने पड़ते थे। अब आप ये देख लें कि मूसा अलैहि सलाम भी अपने घर से निकले, अपनी कौम से निकले, अपने काम सारे छोड़ के निकले, नबी के पास भी बहुत काम होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम ही बिजी हैं, लेकिन हमें लगता है कि घर बैठ के भी हम वक्त नहीं निकाल सकते। वो एक नबी होके सफर कर रहे हैं इल्म के लिए, इससे पता चलता है कि इल्म के लिए सफर करना एक नबी का भी शेबा। और बड़े बड़े उलमा के तो तरीके हैं ही इल्म के लिए, मेहनत करना, मुशक्कत करना, कष्ट उठाना, इल्म के लिए अपने आप को खपाना, ये इसमें पता चलता है। और आगे देखेंगे आप, इसमें उनको थकावट भी हो जाती है, भूख भी लग जाती है, लेकिन चलते जा रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि छोड़ो परे इस काम को, इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत, वहां पे बैठ के भी तो मैं सीख ही रहा था। नहीं, तो जब आप तालिबे इल्म बनते हैं ना, तालिबे इल्म, तालिबे इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म को तलब करने वाला। कितनी तलब है आपके अंदर, आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है? आप भी तो तालिबे इल्म है। जैसे मूसा अलैहि सलाम इल्म की तलब के लिए निकल रहे थे, आप बताएं, जो आप तालिबे इल्म हैं, आप किस किस्म के तालिबे इल्म हैं? क्या आपके अंदर भी ऐसी कमिटमेंट है? क्या आपके अंदर भी ऐसी मेहनत करने का जज्बा है? इससे पता चलता है कि इल्म बगैर मेहनत के नहीं हासिल हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत उठानी पड़ती है। अल्लाह ताला चाहते तो खदर अलैहि सलाम को मूसा अलैहि सलाम के पास ही भेज देते कि मूसा आपको वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपको निकलने की और जगह जगह फिरने की, उनको ही बुला देता हूँ यहाँ। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन ये ही है इल्म का रास्ता कि इसमें मुशक्कतें आती हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि बस ना, जरा सा भी तिनका भी हमें दौरा ना करना पड़े और बस इल्म आ जाए, दिमाग में उंडेल दिया जाए मेरे, बस मैं कुछ भी ना करूं, एक क्लास ले लिया करूं, उसके बाद किताबें बंद करके रख दूं और इल्म मेरे दिमाग में आ जाए। फिर उसके बाद कहते हैं मैं तो याद ही नहीं रहता, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल कैसे ना लगे, आपने कितनी मेहनत की, मुझे भूल जाता है। आपने उसको रिटेन रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए कितना वक्त लगाया, बात तो ये है। उसके बाद फिर शिकायतें किस बात की, अगर हमने वक्त नहीं लगाना था। तो मूसा अलैहि सलाम भी अपना घर बार छोड़ के निकले थे, अपनी फैमिली को छोड़ के निकले हैं, अपने और काम छोड़ के निकले हैं। कमिटमेंट, इल्म के लिए कमिटमेंट चाहिए। और इल्म का रास्ता मुशक्कत का रास्ता है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, मैं आपको बता रही हूँ, तफसीर में नहीं मिलेंगे आपको, प्लीज इनको लिखते जाएं। जो आप बेशक इनकी आयतों का, वो जो मैं आपको सिंपल सिंपल एक माना बता रही हूँ, बेशक ना लिखें, जो कुछ से सबक है ना वो जरूर लिखें। अच्छा, अब वो चले, फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, तो जब वो दोनों पहुंचे मजमा बैनिहिमा, इन दो, बैनिहिमा क्या मतलब, क्या दोनों समुद्रों के दरमियान, जहां पे मजमा, जहां जमा होने की जगह थी, उनके दरमियान वहां पे पहुंच गए। और फलम्मा का माना भी ये होता है कि बड़ा अरसा, अब जैसे कहते हैं ना इवेंचुअली, आखिरकार, तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब काफी अरसा, लंबा अरसा चलते रहे, फिर आखिरकार वो वहां पहुंचे। तो आखिरकार जब वो पहुंचे वहां जहां पे दो समुद्र मिल रहे थे, नासिया होता हुआ, तो वो दोनों भूल गए अपनी मछली को। अब वो जो मछली जिसको अल्लाह ताला ने बताया था कि जहां पे ये जिंदा हो जाएगी वहां पर ए मूसा आपको वो मिलेंगे, तो उन दोनों को भूल गया। फतह सबीलहू फिल बहरी सराबा, तो उस मछली ने समंदर के अंदर सबीलहू आया, अपना रास्ता बना लिया। सबीला फिल बहर भी कहा जा सकता था, तो सबीलहू से मतलब क्या, इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसको उसका रास्ता बताया हुआ था कि कहाँ पे तुमने जाना है। वो वहां निकल के वो जिंदा होके वहां चली गई। आप सुभान अल्लाह, आप देखें, एक भुनी भी मछली है और वो जिंदा हुई है, और ये इटसेल्फ कितनी बड़ा मोजा है कि वो निकली और उसने एक रास्ता बना लिया समंदर के अंदर, वो बास्केट से उछली और निकली। लेकिन उस वक्त यूशा जो थे, यूशा अलैहि सलाम, उन्होंने इस मछली को निकलते हुए देखा था, पानी में कूदते हुए देखा, लेकिन मूसा अलैहि सलाम आराम कर रहे थे, दोनों वहां पे एक चट्टान के पास टेक लगा के जरा रेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे उस्ताद उठेंगे, जब मेरे मालिक उठेंगे, तो मैं उस वक्त उनको बताऊंगा। जब वो उठे तो दोनों चल पड़े और भूल गया उनको बताना। लेकिन फिर दोनों की तरफ क्यों कहा गया दोनों को भूल गया, इसलिए कि मूसा अलैहि सलाम को भी भूल गया उनसे पूछना। अब देखिए ना, एक बंदे ने मसलन, आप अपने बच्चे को कोई जरूरी कागज देते हैं कि भाई ये बेटा संभाल के रखना, अब कहीं उतरे तो आप फिर पूछेंगे रख लिया ना तुमने, फिर कहीं आगे जाएंगे है ना तुम्हारे पास, बार बार आप पूछते हैं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप वहां से उठे हैं तो मूसा अलैहि सलाम को भी पूछना भूल गया कि वो मछली तो ले ली है ना साथ, तो उनको भी भूल गया बताना। और मछली ने अपने एक सुरंग सी बनाई है पानी के अंदर और एक अजीब ही तरीके से वो उसमें चली गई। और ये देखें भी एक मुशरिकीन ने मक्का के लिए भी एक मैसेज था कि अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा कर देगा, अगर मछली को जिंदा कर सकता है तो तुम्हें भी जिंदा कर सकता है मरे हुए को। फलम्मा जावजा, तो जब वो आगे बढ़े यानी उस जो उनका जहां पे उनको मिलने थे वो खाजिर अलैहिस्सलाम, वहां से आगे बढ़ गए। कौल अली फताह, तो उन्होंने कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, आतीना गदाना, हमें हमारा नाश्ता लेकर आओ। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है बाज तफसीरों में कि वो मछली से खा भी रहे थे लेकिन वो जब उस वक्त से जिंदा होकर वो चली भी गई। लकद लकीना मिन सफरीना हाजा नसबा, अलबत्ता तहकीक हमें पहुंची है हमारे इस सफर की वजह से बड़ी थकावट हो गई है हम। उलमा कहते हैं कि देखो जिस वक्त तक वो यहां भी नहीं पहुंचे थे, जो उनका जो मीटिंग पॉइंट था जिस जगह पहुंचना था वहां तक तो थकावट नहीं, जब उससे आगे निकल गए यानी जो उनका मकसद था उससे आगे निकल गए तो तब थकावट भी महसूस होने लगी। तो उनको अब थकावट ही, तो कह रहे हैं कि हमारा खाना लेकर आओ। अच्छा, इससे हमें पता भी ये चलता है कि जब हम कहीं सफर पे निकले, चाहे वो क्या नाम है, इल्मी सफर है या वैसे सफर में निकले, तो अपने साथ आप कुछ खाना वगैरह अपना ज्यादा रहा साथ ले जा सकते हैं, ले जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जब वो उन्होंने ये कहा, एक और बात है यहाँ पे उलमा कहते हैं कि देखिए एक इसमें और सबक है कि तालिबे इल्म के लिए ना दो चीजें हैं जो इल्म के रास्ते में उसके लिए प्रॉब्लम बनती है, एक निसियान और एक नसबा। एक है ना नसिया और एक नसबा है, भूल गए और थकावट। यानी तालिबे इल्म को इन चीजों से वास्ता पड़ता है इल्म के रास्ते पे, इन रुकावटों को उसको ओवरकम करना होता है। कि जैसे मसला ना कि आज तो मैं थक गई हूं, आज तो मैं क्लास में ही नहीं आ सकती, छोड़ो आज क्लास को बाद में ले लूंगी, रात को बड़ी देर से सोई थी, तो इस रास्ते में ये चीज एक रुकावट है, थकने की वजह से काम छोड़ नहीं देना। दूसरा, भूल जाता है, मुझे तो भूल ही जाता है लिहाजा मैं कर ही नहीं सकती, हमें तो याद ही नहीं रहता। तो ये भी इंसान के इल्म के रास्ते पे चलने में उसके लिए रुकावट बनती है। तो उन्होंने कहा, कौल अराइता इद अवैना लिस्सोहरती फइन्नी नसीतुल हूत, उन्होंने कहा, किसने? यूशा बिन नून ने, जो उनके खादिम थे, स्टूडेंट थे। आपने देखा कि जब हमने वो उस चट्टान के पास पनाह ली थी, वहां पे आराम करने के लिए लेटे थे, तो मैं भूल गया आपको मछली का बताना, और मुझे भुलाया नहीं मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करूं आपसे। उन्होंने फौरन अपनी गलती को मान लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आई बाएं शाएं करने, ओहो मैं अभी लेकर आता हूं मछली, ओहो कहाँ गई मछली वो मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं, अपनी गलती को माना कि मैं भूल गया था। और शैतान हमेशा इंसान को कोई भी नेकी का काम, कोई भी अहम काम भुलवा देता है, इसीलिए उलमा कहते हैं जब आप कुछ भूल जाएं तो औजु बिल्ला पढ़ें। आम जिंदगी में आप भी, आप देखिए नमाज भुलवा देता है, नमाज के अंदर कोई सूरत भुलवा देगा, इसी तरह और चीजें भुलवा देता है, तो शैतान का ये काम है। लेकिन जब इंसान का इरादा पक्का हो तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करता। तो अब वो बता रहे हैं कि मुझसे, मैं भूल गया आपको बताना, और उसने अपना रास्ता ले लिया समंदर में अजीब ही तरीके से। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो बजाय उसको कवर करने के झूठ के साथ या उसको छुपाने के किसी और तरीके से, इंसान सही बात को बयान कर दे, इसमें ज्यादा बेहतरी है उसके लिए। ठीक है, तो यहां से हमें ये सबक मिला कि कभी भी भूल चूक से, इंसान इंसान है, भूल चूक हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह कि उसके बाद उस गलती पे जम ना जाए, बल्कि उस गलती को फिक्स करने की कोशिश करें और सच बोलें, ना कि इंसान झूठ के साथ उसको कवर करे। ठीक है, यही सही रवैया कि इंसान सच बता दे। अच्छा, अब उन्होंने बता दिया कि इस तरह से हुआ, काला दाले का मां कुन्ना नब, तो उन्होंने कहा यही तो है जिसको हम चाहते थे, इसके लिए तो हम आए थे। फरतदाला सारी हिमा कससा, तो वो दोनों पलटे अपने निशानों पर, निशाने कदम पे तलाश करते हुए, फॉलो करते हुए उसी रास्ते को फॉलो उन्होंने किया जिससे आए थे ना, उसी पे वापस गए, क्योंकि आगे जो निकल गए थे। तो इससे हमें एक बात ये पता चली कि मूसा अलैहि सलाम ने उनको कोई डांट डपट नहीं की, कोई सरस नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गया था। तो इस अल्लाह ताला ने भी इस उम्मत पे से हदीस में आता है भूल चूक को माफ किया। इसे हमें पता चलता है कि एक उस्ताद को भी अपने शागिर्दों की भूल चूक के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह नहीं कि बिल्कुल सख्ती करके खड़े हो जाए, या इसी तरह और लोगों के भी, आपके घर में किसी से भूल हो जाती है, हस्बैंड भूल गए कोई चीज लाना बाजार से, आपकी माशाल्लाह एनिवर्सरी भूल गए, तो अब उसके बाद इतने बरहम होने की जरूरत नहीं, आप भूले तो वो भूले कैसे फिर आप, आपको यही भूल गया, आपको कैसे भूल सकता है, आपको मेरी बर्थडे भूल गई, आपको फलां चीज भूल गई। भाई भूल इंसान के साथ लगी हुई है, निसियान इंसान के साथ है, इंसान है ही खता का पुतला, भूल चूक का पुतला। तो इसलिए इसके अंदर इतनी बरहम होने की, जब अल्लाह ताला माफ कर देता है कि इंसान अगर भूल जाए तो उसकी भूल को अल्लाह ने माफ किया, तो हम क्यों नहीं दूसरों की भूल चूक को माफ कर सकते? कि कोई अगर वाकई भूल गया है और उसका वाकई जेन्युइन एक्सक्यूज है, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है कि हम उसको माफ कर दें और उसको दरगुजर कर दें। तो अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर हम यहाँ पे होते तो हमने कितना गुस्से में आना था कि एक मछली तुम्हारे हवाले की और तुम वही भूल गए और तुमने उसका ही नहीं बताया, और तुम भूले तो भूले कैसे? अब देखो हमें कितना सफर करना पड़ा, हम आगे निकल गए और वजब ना होते या कुछ होते नहीं। अब आप खुद सोचे, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके बच्चे ने रास्ता नहीं बताया, या हस्बैंड को रास्ता भूल गए कहीं और चले गए, फिर उसके बाद फिर क्या होता है? तो यहाँ पे हालांकि उनके अंडर है यूशा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर कुछ रोब झाड़ के और उनको बुरा भला कह रहे हैं और सख्त गुस्सा और सख्त सुस्त कह रहे हैं और मैंने तुम्हें दी ही क्यों, और ऐसे ये नहीं नजर आता हमें। ये भी हमें पता चल रहा है कि वो एक नौजवान है, बाद में आपको पता है ये भी नबी बने थे यूशा बिन नून, जब मूसा अलैहि सलाम की वफात हो गई तो यही बनी इसराइल को लेकर फिर दाखिल हुए थे फलस्तीन में। और ये सुभान अल्लाह, ये वो वाले पैगंबर हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, वक्त को ठहरा दिया था, जब इन्होंने दुआ की थी, जब दाखिल होने लगे थे, जुमे की शाम थी तो सैटरडेज को ये लोग काम नहीं करते थे, यहूदी ना इबादत का दिन था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी तो कि या अल्लाह के सूरज को ठहरा दे कि वो दाखिल हो जाए उस वक्त, तो अल्लाह ताला ने सूरज को ठहरा दिया था। तो बहुत बड़े ये भी नबी हैं अल्लाह के, मगर उनकी भी आजी है देखें, और वो अल्लाह के नबी के साथ साथ रहते हैं, उनके साथ सीख रहे हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, ये सबक मिलता है कि अपने से ज्यादा इल्म वाले के साथ रहने से इंसान इल्म सीखता है, कोई नसीहत की बात हासिल करता है, कुछ उसकी इसलाह होती है, कुछ वो उसको बहुत से मौके मिलते हैं उसको देख के और उसके मुताबिक अपने जिंदगी को ढालने में, या बहुत सारी चीजें इंसान लर्न करता है ना। अच्छा, अब वो वापस चल पड़े बगैर किसी शिकवे के और बगैर कुछ कहे हुए, अब उन्हीं कदमों के ऊपर वापस चले, और ये भी देखें एक कमिटमेंट है कि बाज दफा इंसान कहीं लॉस्ट हो जाता है ना, या आगे निकल जाता है, तो फिर वो उसकी डिटर्मिनेशन खत्म हो जाती है, कहते हैं चलो अब घर ही चलते हैं, अब रहने दो, लेकिन वो इतने कमिटेड थे ना कि उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि अभी क्या बताया कि थक भी गए हैं, भूख भी लगी हुई थी, और मछली भी नहीं अब रह गई उनके पास, तो अब भूखे ही आगे भी चले गए, फिर पीछे आ रहे हैं, ये नहीं कह रहे छोड़ छोड़ो ऐसे इल्म को, कमिटमेंट अंदाजा कीजिए इसका, और ये किसकी कमिटमेंट है। और साथ साथ हम अपनी कमिटमेंट्स भी देख लें, जरा सी थकावट हो जाए, नहीं अब नहीं हम कर सकते, जरा सा कोई खाने पीने में ऊंच नीच हो जाए, नहीं हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन देख लें मूसा अलैहि सलाम को, चल रहे हैं ना फिर भी। फवजद आबदन में निबादीना, तो उन्होंने पाया, दोनों ने, उन दोनों ने, किन दोनों ने, मूसा अलैहि सलाम और यूशा बिन नून ने, उन्होंने पाया एक बंदे को हमारे बंदों में से। अब ये बंदे कौन थे जिनका मैं उस वक्त से बात आपको कर रही हूँ, खदिर अलैहि सलाम। खदिर कौन है? अच्छा, अब ये एक ऐसी बात है जो कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि खदिर अलैहि सलाम कौन थे, क्या वो नबी थे या क्या वो कोई फरिश्ते थे या क्या चीज थे वो। इसमें उलमा ने बहुत कुछ बहसें की हैं, और आप जितने स्कॉलर्स को सुन लें, जितनी तफसीरों को आप पढ़ लें, उनके अंदर आपको बहुत सारे दलाइल मिलेंगे, हर एक के अपने दलाइल हैं। कोई इस चीज़ पे इंक्लाइंड है कि वो एक नबी थे, कोई इस चीज़ पे इंक्लाइंड है कि वो फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ताला ने एक इंसान के रूप में ज़मीन पे उतारा था कुछ काम करने के लिए। मेरा तो इल्म खैर बहुत कलील है, लेकिन पर्सनली मैं जिस तरफ सोचती हूँ, जितना कि मेरी आज तक मुताले में आया, कि वो कोई फरिश्ते ही थे। क्यों? इसलिए कि अंबिया के वो काम नहीं है जो कि यहाँ पे काम बताए गए, ना ही आप कहीं अंबिया की फहरिस्त में इनका नाम पढ़ेंगे। कुरान पाक में इनका नाम नहीं आया, हदीस में आया इनका नाम, कहीं कुरान में किसी के, बेशक और भी कई पैगंबरों के नाम नहीं आए। वरना ये पता चलता है किस बस्ती की तरफ ये मबऊस किए गए इस किस्से में, बल्कि वो कुछ काम ऐसे लग रहा है इस किस्से से कि वो कुछ काम करने पे मामूर किए गए। जैसे अल्लाह ताला की जो, जिसको हम कहते हैं ना तकवीनी इल्म, यानी जो अल्लाह ताला के कुन कहने से जो इल्म होते हैं, जो गैब के उलूम है, उनमें से कुछ इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया गया, दिया था जो उनके लिए जरूरी था इन कामों को करने के लिए, कि ये इस तरह से किया जाए। ये जैसे अल्लाह ताला के कई दुनिया के अंदर जो भी वाकयात होते हैं उन पे कई फरिश्ते मामूर हैं, कहीं कोई जान निकालने वाला है, कहीं कोई रिस्क लाने वाला है, कहीं बादलों को चलाने वाला है। इसी तरह यूं महसूस होता है कि जैसे ये कोई फरिश्ते थे। बाज कहते हैं कि नहीं ये नबी थे, और नबी वो कैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि इनके पास जो इल्म था, उन्होंने एंड में आप देखेंगे उन्होंने कहा भी कि मेरे पास जो भी मैंने ये किया है ये अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। तो नबियों को ही अल्लाह ताला उनसे ही कलाम फरमाता है, किसी आम इंसान से तो नहीं कलाम करता। और ये भी कि वो नबी थे और उनके पास कोई और किस्म का इल्म था जो कि मूसा अलैहि सलाम के पास नहीं था। हालांकि मूसा अलैहि सलाम के पास जो शरीयत का इल्म था, उनके पास एक तकवीनी इल्म, जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ अल्लाह ताला के इल्म में गैब से मुतल्लिक, जो अल्लाह ताला कौन फरमा के जो करते हैं उससे मुतल्लिक जो इल्म है वो उनके पास था। जब बाज़ सूफिया दूसरी तरफ निकल गए और उन्होंने कहा कि उनके पास जो इल्म था वो था कि जो औलिया अल्लाह को दिया जाता है, जो इस आयत में भी आप देखेंगे मिल्ला दुन्ना इल्मा, तो इल्मे लुदनी था जिसको वो कहते हैं। इल्मे लुदनी, आपने ये टर्म सूफिया के यहाँ बहुत बड़ी मशहूर है हदीस, और इसमें तो नहीं है कहीं पे भी ये, मगर वो इल्म जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को मिलता है, वो कहते हैं कि वो औलिया अल्लाह में से थे, और औलिया अल्लाह में से वो इस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे वो अब वो वाले काम करने लगे जो दुनिया का निजाम चलाने के लिए, और जिनको मैं आपको कह रही हूँ अमूर तकवीनी, उन वो जो वो अमूर है वो सर अंजाम देने लगे, कायनात के काम करने लगे, क्योंकि वो इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं। जबकि इसकी कोई भी कहीं से हकीकत, कहीं से कोई दलील, कहीं कुरान हदीस से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि औलिया अल्लाह इस तरह के मकाम पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो यहीं तक नहीं ठहरे, उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के ये कह दिया कि देखें औलिया का मकाम तो अंबिया से भी ऊपर है, इसलिए कि एक नबी जा रहे हैं एक वली से सीखने के लिए। तो ये सारी बातें सही नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम उलुल आजम पैगंबरों में से, और पैगंबर तमाम इंसानों से ऊपर होते हैं, और पैगंबरों में भी वो टॉप पे हैं, तो उनके ऊपर कौन से इंसान हो सकते हैं? उनसे ऊपर तो कोई इंसान नहीं हो सकता। तो ये कहना कि वली का दर्जा जो है वो नबी से भी ऊपर है, ये गलत है। अंबिया का दर्जा बुलंद होता है, वली का दर्जा नीचे है। तो वो अब फिर उन्होंने इस चीज से ये कहा कि ये कई शख्सियात हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके पास सीक्रेट उलूम है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इनको कहे, जबकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला सिर्फ अंबिया की तरफ वही करता है, बाकी किसी तक भी डायरेक्टली कोई भी बातचीत अल्लाह ताला नहीं करता। वो कहते हैं कशफ हो जाता है, ये हो जाता है, और बल्कि ये हमारे जो औलिया हैं ये तो ऊपर आसमानों पे जाते हैं और जाके वहां पर इल्म लेते हैं। इब्ने अरबी के बारे में मशहूर है सूफिया के यहाँ, एक इब्नुल अरबी है कि इब्ने अरबी है, तो इब्नुल अरबी की नहीं बात करी, वो तो सही है, इब्ने अरबी जिनको कहते हैं वो मशहूर सूफी हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने तो 70 मेराज की हैं, आसमानों पे गए, वहां पे सीख के आए। और सिर्फ इनके बारे में नहीं, और भी कई सूफिया के बारे में वो कहते हैं कि वो तो आलमे बाला में जाते हैं और वहां से वो सीख सीख के आते हैं, डायरेक्ट वहां से इल्म लेते हैं, वो वहां की मजलिसों में बैठते हैं, आपसे सलाम की मजलिस में बैठते हैं और ऐसे करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां खदीर अलैहि सलाम के बारे में भी मशहूर कर दी गई, क्योंकि उनको औलिया अल्लाह में से उन्होंने कहा कि हैं, तो जबकि इस बात के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। और वो सिर्फ इस तक नहीं ठहरे हैं, फिर आगे भी वो कहते हैं कि भाई वो तो जिंदा है, आज तक वो तो फौत ही नहीं हुए, जबकि इस तरह की भी कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आपसे सल्लम ने फरमाया कि यहूदियों से फरमाया कि अगर मूसा भी आज जिंदा होते तो मेरे पास आते और मेरे ऊपर ईमान लेकर आते, ईसा अलैहि सलाम भी आएंगे तो वो आपसे सलाम पर ईमान लेकर आएंगे, तो क्या खजर अलैहि सलाम अगर जिंदा होते तो वो क्या आते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ईमान ना लाते? तो अगर वो एक ऐसी हस्ती थे जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं और जिंदा हैं आज तक, तो इसलिए तो ऐसी बात हमें नहीं मिलती। और फिर एक हदीस में भी पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम से एक खुतबे में कि जो इस वक्त मौजूद है जमीन पे, जो भी इस वक्त मौजूद है वो अगले 100 साल में नहीं होंगे। और एक सहाबी थे, वो या 8 हिजरी का वाकया, वो 108 हिजरी में वो फौत हो गए थे। यानी जितने भी आपसे सर ने फरमाया कि इस जमीन पे इस वक्त है, तो इसकी वो आगे से तावील कर देते, नहीं जी वो इस वक्त जमीन पे नहीं थे, वो तो पानियों पे थे और पानियों पे उनकी हुकूमत है। इसलिए आपने बाज दफा सुना होगा कि कहते हैं कि भाई वो इस तरह तूफान आ रहे हैं तो खजर अलैहि सलाम को जो है ना आप पुकारे, अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क नहीं है तो और क्या है? और फिर वो कहते हैं वो ग्रीन है, वो उड़ते फिरते हैं और वो पता नहीं क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से जो भी करते रहते हैं और हर तरफ, ऐसा कुछ भी हमें इस किस्से में ऐसी कोई भी बात नहीं मिलती, हदीस में भी नहीं मिलती। अल्लाह बेहतर जानता है इन्होंने कहाँ से ये चीजें ढूंढी और कहाँ से ये इस चीज को बयान करते हैं। फिर वही फिर बात आ जाती है ना कि हम तो खुद ही पढ़ते हैं, हम खुद ही कहीं से किसी मजलिसों में बैठ के आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की, और हम बताते हैं फिर आके हमें कहीं से डायरेक्ट इल्म मिल रहा है। और आप ऐसे कुछ जाहिल ऐसे लोगों को आज भी देखेंगे जो अपने आप को बड़े उलमा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हम तो जाके आपसे सलाम की मजलिस में बैठ के आए हैं, वहां से हम सीख के आए हैं, और यहीं बैठे बैठे हम मक्का मदीना होके आ गए हैं, यहीं बैठे बैठे हम तो आसमानों पे होके आ गए हैं और वहां पे होके आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। सहाबा कराम से ऊपर का दर्जा तो किसी का नहीं हो सकता ना, अंबिया के बाद जो सहाबा कराम का दर्जा आता है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम तो ऊपर से होके आ गए हैं, हम तो यहाँ पे बैठे बैठे आपसे सलाम की मजलिसों में मौजूद होते हैं, उनसे हम तो सीखते ही जा रहे हैं। ये वल्लाहु आलम कितने, किसी ने कहा मैं तो 30 साल पढ़ता रहा हूँ आपसे सलाम की मजलिस में जाके, आज के जो सो कॉल्ड उलमास में से एक आदमी की बात कर रहे हैं, 30 साल में पढ़ता रहा हूँ, वल्लाहु आलम। तो ये है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अब चूंकि हतमी इसमें कोई बात नहीं, इसलिए आपको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट बातें मिलेंगी। अगर आप किस्से से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि कहीं पे भी नबियों के हालात में आपने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी कि वो ऐसे काम करते फिर रहे हों, कहीं ऐसे ही लगता है कि इनको किसी तरह से, मतलब इन कामों पर अल्लाह ताला ने मामूर किया हुआ है कि आप ये काम करेंगे, तो वो उनको कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे हैं और इंसानी सूरत के अंदर। फवजद आबदम मिन इबादिना, तो दोनों ने पाया एक बंदे को हमारे बंदे में से, ये हैं हजर अलैहिस्सलाम। तो क्या अल्लाह ताला ने उनका इंट्रोडक्शन कराया, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा आपसे भी ज्यादा एक इल्म वाले हैं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन क्या कराया, एक आलिम आलमों में से, एक बहुत बड़े शेख, एक बहुत बड़े कुछ ऐसे करके नहीं, आब्द आब्द, देखें ये गुलाम हमारे गुलामों में से। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला के सामने इंसान कितना भी ऊपर चला जाए, उसके पास कितना भी इल्म आ जाए, लेकिन वो बंदा ही है, वो उसका गुलाम ही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरह इसरा के शुरू में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अब्दी कहा गया। इससे पता चलता है कि एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के हाँ जो बुलंद मुकाम पे पहुंचना है, वो ये कि अल्लाह ताला उसको अपना बंदा कह दे, मैंने इबादीना हमारे बंदों में से एक बंदा। और ये इबादीना वैसे तो सारे ही अल्लाह के बंदे, सारे इंसान अल्लाह के बंदे, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को कह दे, जैसे बैतुल्ला है, नाकतुल्ला है, तो उसकी ये एक तशरीफ के लिए होता है, यानी उसका शर्फ बयान करने के लिए, तो उसके ऑनर के लिए होता है। तो हमारे बंदे जिसको अल्लाह अपना बंदा कह दे, ये उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो इंसान जितना भी ऊंचा चला जाए, वो अब्द ही रहता है, वो ये नहीं हो जाता कि वो अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह ताला के बराबर कहीं हो गया या ऐसी कोई मुकाम पर पहुंच गया, वो अब्द ही रहेगा, वो कहां तक भी चला जाए। ठीक है, अब्द मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उसको अपने पास से रहमत दी। रहमत का मतलब क्या, जिनका ख्याल ये है कि खजर अलैहिस्सलाम नबी थे, तो वो कहते हैं रहमत से मुराद यहाँ पे नबुव्वत है। ठीक है, जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो अल्लाह ताला की और कई इनामात उनके ऊपर थे, वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाए। और अल्लाह ताला ने इल्म को भी अपनी रहमत फरमाया है, जैसे अर्रहमान अल्लामल कुरान है ना, तो कुरान सिखाया रहमान ने, तो ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने सिखाया उसको अपने पास से इल्म, अल्लाह ताला ने ही इल्म सिखाया, उनका भी कोई इल्म अपना नहीं कोई कमाल था, अल्लाह का दिया हुआ इल्म था। यहीं से मिल्ला दुन्ना जो है ना, यहीं से उन्होंने बना दिया इल्मे लुदनी, कि हमें भी इल्मे लुदनी मिलता है, तो वो हम जाते हैं, और ये इल्म की एक किस्म है, आप कभी सुना होगा शायद आपने। और यहां से आप देखें कि वो जब गए, तो वहां पर इन दोनों को, यानी यूशा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को, खजर अलैहिस्सलाम मिले, जो के बैठे हुए थे एक चट्टान के पास, और उनके सर पे कपड़ा था, जैसे हुड आप समझे, हुड लिया हुआ था, और वहां पे बैठे हुए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहुंच के उनसे फरमाया सलाम वालेकुम। इससे पता चलता है कि पिछले पैगंबरों में भी सलाम एज ग्रीटिंग था, बल्कि ये आपको पता है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो पहली बात सिखाई है, वो ये सलाम करना ही सिखाया, फरमाया जाओ जाके फरिश्तों को सलाम करके आओ, इस तरह से सलाम करना, और देखना वो क्या जवाब देते हैं। जब उन्होंने वापस जवाब दिया, तो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये आपके लिए और आपकी औलाद के लिए ग्रीटिंग है। ठीक है, तो इसलिए सलाम उस वक्त से, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके उनको सलाम किया, तो उन्होंने कहा इस जमीन पे सलाम, इस जमीन पे सलाम, यानी इस, वो हो सकता है, एक वजह ये बयान की गई कि हो सकता है कि उस जमीन के ऊपर तमाम लोग मुशरिक हैं, तो उन्होंने कहा सलाम कहाँ से आ गया यहाँ पे कि कोई सलाम करे। दूसरी वजह ये बयान की कि उस जमाने के अंदर सलाम करते थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे कि मैं फलां हूँ, तो उन्होंने कहा ये कैसा सलाम है, यानी आपने अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं कराया। तो दोनों वजूहात हो सकती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा कौन से मूसा, बनी इसराइल के मूसा? आपने फरमाया हाँ। सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को जानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम उनको नहीं जानते। मूसा अलैहिस्सलाम का इतना नाम था, इतनी पहचान थी कि वो उनको पता था इनका। और इसमें कोई शक नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा खदर अलैहिस्सलाम से ऊपर का था, ये याद रखिए बात। भले कि उनके पास इल्म था, लेकिन जो दर्जा है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम का बुलंद है, क्योंकि अगर खदर अलैहिस्सलाम नबी है तब भी वो उलुल अजम पैगंबरों में से नहीं है, अगर वो फरिश्ते मान लिए जाए तब भी फरिश्ते जो हैं वो अंबिया से तो इंसान से तो नीचे ही हैं, क्योंकि इंसानों को सजदा, इंसान को सजदा कराया गया फरिश्तों के जरिए। अच्छा, अब जब उनको ये इल्म अल्लाह ताला ने कोई खसूसी इल्म इनको अता फरमाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनको ऐसे गैब के उलूम में से इल्म दिया गया, मगर ये याद रखिए कि उनको कोई कुल्ली इल्म नहीं था, इसलिए कि अगर उनको कुल्ली इल्म होता तो वो क्यों पूछते कि आप कौन से मूसा, बनी इसराइल के मूसा हैं आप? मूसा अलैहिस्सलाम को इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत ही क्या होती? जैसे आज वो ऐसे फ्रॉड किस्म के लोग बैठे होते हैं, कहते हम आपका मसला हमें तो पहले ही पता है, आपका नाम ये है, आपका मसला ये है। असल में उन्होंने जिन्नात उनके कब्जे में होते हैं, जिन्नात लोगों के पीछे लगा देते हैं, वो उनके नाम वारा पूछ के आके इनको बता देते हैं। आप कहते हैं इतने इंप्रेस हो जाते हैं, इनके पास पता नहीं कौन सा इल्म है। तो ऐसे लोग गलत ही होते हैं। तो अब वो ये इसलिए ये बात यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है कि ये ना हो कि आप ये समझे कि इनको पता नहीं पूरा ही इल्म गैब था तो सारी चीजें इनको पता थी, बल्कि अल्लमनाहु बिल्लदुन्ना इल्मा, हमने अपने पास से उनको इल्म अता फरमाया था। तो कुछ हिस्से, और यहां से भी हमें पता चलता है कि इल्म की बात बाद में आई है और रहमत की बात पहले आई। क्यों? इसलिए कि रहमत अल्लाह ताला की हो और फिर इल्म आए, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। अगर रहमत है इल्म नहीं है फिर भी गुजारा चल सकता है, लेकिन अगर इल्म आ जाए और रहमत ना हो तो ये इल्म मैंने बताया ना आपको आफत बन जाता है, ये इल्म एक मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इंसान फिर अल्लाह की रहमत ना हो तो इल्म हासिल करने के बाद तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, उसी इल्म को लेकर वो लोगों को गुमराह करने लगता है। तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ ही इल्म भी फायदेमंद है, तो हमने उनको रहमत भी दी और इल्म भी दिया। तो अल्लाह ताला की रहमत ही है कि इल्म इंसान को फायदा देने वाला बन जाए, इल्म नाफे बन जाए, क्योंकि इल्म उलूम भी तो बहुत किस्म के होते हैं ना, आगे बात आएगी। क़ाल लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा हल अत्तबियु का, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूं? अला अंतु अल्लिमनी मिम्मा अल्लिमता रुश्ता, इस पे जो आप जो इस बात के ऊपर कि आप मुझे सिखा दें जो आपको सिखाया गया रुश्त में से। बहुत सारी बातें इसके अंदर समझने की हैं। सबसे पहली बात है, इसमें आपको अदब पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम आई हैं, तो अब ये नहीं आके कह रहे कि आप बस मुझे सिखा दें, जैसे कोई हुक्म दे रहा होता है आप सिखाएं ना वहां हमें, अगर हम इतनी दूर से आए हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, इतने हम थके हुए हैं, बस जल्दी जल्दी सिखाएं, बस 2-4 दिनों में मुझे सिखा के फारिग करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने जाके अपनी कौम भी देखनी है। ये रवैया, या हल अत्तबियों का एक रिक्वेस्ट है और एक इजाजत मांग रहे हैं, क्या मैं करूं? ये नहीं कि मैं अब आपके साथ चलूंगा, मैं बस आपके साथ चलूंगा, मुझे पता चला आपके पास बड़ा इल्म है तो बस मैं चलूंगा आपके साथ, नहीं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूं? उलमा ने इस बात को लेकर फरमाया कि इत्तबेउ का इसका मतलब यह है फॉलोइंग करना, और फॉलो कब किया जाता है, जब किसी की इताअत की जाए, किसी को की बात मानी जाए। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज इल्म हासिल करने से भी पहले ये चीज है कि इंसान इस पे कमिटेड हो कि वो अपने उस्ताद की बात को मानेगा। ये नहीं है कि बात नहीं हमने माननी, ऐसा आप इल्म सिखाएं और हम जा रहे हैं। और आज तो रवैये ये होते हैं कि इंसान लोग आते हैं इल्म सीखने के लिए, लेकिन हाल ये होता है उनका कि बस आप सिखाएं हमें, बस अब मतलब जल्दी जल्दी आप हमें पढ़ा दें, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। और फिर दूसरी, हमने आपकी क्या बात सुननी है या माननी है। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ना कि मैं आपको पैरवी करूंगा, फॉलो करूंगा, फॉलो ही होती ही इताअत के साथ है, यानी मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके साथ साथ रहूंगा। और इसमें उलमा ने एक और माना भी किया कि मैं आपकी खिदमत करूंगा इस पे कि आप मुझे तालीम दे, इसमें से ये भी माना निकाला है। तो आज क्या ये जो मैं आपको हाल बता रही हूँ वो ये है कि आप आज आके जो स्टूडेंट आते हैं उनके रवैये होते हैं, उस्ताद को कहते हैं कि आप हमारी बात माने, हमने तो आपकी बात क्या माननी है, आप हमारी बात मानेंगे ये तो फिर हमने पढ़ाई करनी है, वरना मैं कोर्स छोड़ के जा रही हूँ। यानी धमकियां देते हैं, मैं तो नहीं फिर पढ़ सकती, आप ऐसा करें, पहले हमारा ग्रुप ये करें, पहले हमारे ये करें, पहले आप स्लो पढ़ाएं, पहले आप तेज पढ़ाएं, पहले आप इतनी देर में खत्म करें, या ऐसे। अरे की अपनी मर्जी है ना, वरना टीचर ने क्या स्टूडेंट को फारिग करना है, स्टूडेंट कहते हैं हम आपको फारिग कर देंगे। यानी इतना प्रेशर देते हैं उस्ताद के ऊपर ये, तो इसीलिए तो इल्म की देख लेना आज कोई हाल नहीं है, पढ़ पढ़ के भी कोई हाल नहीं है, क्योंकि कोई कदर नहीं है, ना इल्म की कोई कदर है, ना इल्म वाले की कोई कदर है। आज इस इल्म की इसलिए वैल्यू नहीं कि जो कहते हैं ये तो बस मुफ्त में ही मिल रहा है ना, इसलिए मुफ्त चीज की वैल्यू नहीं। जहां पे पैसे देने पड़े वहां पे भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं, मगर इसलिए नहीं कि हमको इल्म की कदर होती, इसलिए कि यहाँ पे पैसे दिए हैं, फिर बार बार कहते हैं हाँ इतनी फीस दी हुई है ना तो क्लास में तो जाना ही चाहिए, वहां पे भी पैसों की वैल्यू है। तो यहाँ पे अदब, एक स्टूडेंट को कैसा बाअदब होना चाहिए वो बताया गया है कि वो उस्ताद के सामने अपनी ओबीडियंस का इजहार करें। मैं क्या मैं आपके साथ आपको फॉलो कर सकता हूं? और मूसा अलैहिस्सलाम की हम्बलनेस आप देखें, उनकी आजजी देखें, थके हुए हैं फिर भी ये कह रहे हैं, फिर भी उनसे इजाजत चाह रहे हैं, फिर भी कोई धौंस नहीं है, फिर भी कोई धमकी नहीं है। हालांकि देखिए खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे पास अलग इल्म है जो आप नहीं जान सकते, और आपके पास एक इल्म है जो मैं नहीं जान सकता, दोनों अलग अलग इल्म के मालिक थे। मैं आपको बताया ना, उनके पास अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल इल्म दिया हुआ था। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्म को लेने आए, वरना ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपने पास कोई इल्म नहीं। तो चाहे बंदे का अपना इल्म कितना ही हो, मगर जब इल्म लेने का वक्त आए तो आजी जरूरी है। याद रखिए, जब आपने, आप देखिए एक बर्तन है ना, जब आपने उसमें पानी लेना है तो बर्तन को नीचे होना पड़ता है, और जिस बर्तन से पानी उंडेलना है उसको ऊपर लाजमी होना पड़ेगा। अगर जिस बर्तन से आपने पानी लेना है उसको नीचे कर देंगे और खाली बर्तन ऊपर कर देंगे, तो क्या कभी पानी उसमें आ सकता है? नहीं आ सकता, उसको नीचे ही जाना पड़ेगा तभी उसके अंदर पानी आ सकता। तो ये बातें सोचना के मैंने तो आजी की क्या जरूरत है, ये हमारे लिए आजी करे ना, ये हमें इस तरह से बताएं, ये हमारे लिए सारा कंफर्ट का इंतजाम करें, इनको हमारी बात माननी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। और तकब्बुर के साथ इल्म नहीं आना कभी भी। और यहां से उलमा ने एक और बात निकाली है, उन्होंने कहा कि देखो बेस्ट तरीका इल्म हासिल करने का यह है कि किसी उस्ताद से इल्म हासिल किया जाए। यहां पे वो उस्ताद के साथ रहने को कर रहे हैं, ये सोच कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के, बाज लोग कहते हैं ये घर में हम इतनी तफसीरें हमारी पढ़ी हुई हम वो पढ़ते रहते हैं बस, हमने आगे क्यों सीखना। याद रखें जो लोग घर में तफसीरें किताबें पढ़ पढ़ के समझते हैं ना कि हम आलिम बन गए, कभी सही इल्म नहीं हासिल कर सकते, वो ठोकर खा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ, छोटी सी, और बेशुमार मिसालें हमारे साथ कराम बहुत मिसालें दिया करते थे। एक मिसाल मेरे सामने आई कि किसी ने कहा कि हमने इमाम नुई की बुक पढ़ी है। इमाम नुई कौन? इमाम नुई? पता चला इमाम नववी को कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं, पता ही नहीं कैसे, जाहिर है किताबें पढ़ पढ़ के देख ली। तो इसी तरह बाज दफा सिर्फ किताबें पढ़ने से ऐसे होता है कि इंसान कहा कुछ गया होता है, समझ कुछ और लेता है। कौन वेरीफाई करेगा कि आपने सही समझा कि नहीं? दूसरे इंसान को ये नहीं पता होता कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। और आप देखें किसी और फील्ड में ऐसे नहीं है, आप मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं पे भी ले लें, कोई मेडिकल की किताबें घर में पढ़ पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाता। लेकिन दीन का इल्म क्या इतना फारिग है कि इसके लिए ना किसी उस्ताद की जरूरत है, ना सीरियसनेस की जरूरत है, ना स्टूडेंट बनने की जरूरत है। बस हम समझते हैं ऐसे ही, बस बर्तन धोते, गाड़ी चलाते, टीवी देखते, या व्हाट्सएप के ऊपर बस थोड़ी वीडियोस देख के बहुत बड़ी मेरे इल्म की बातें आ गई हैं, मुझे दीन का सारा इल्म आ गया, हमें कुछ और सीखने की जरूरत है, सब पता चल गया हमें गूगल के ऊपर कर करके देख के, तो चलो जी चीज मसलों के हल निकाल ली। तो क्यों नहीं आप ऐसे करते कि अगर कभी बीमार हो तो दवाइयां भी यहीं से गूगल से पूछ के ले लिया करें, क्यों डॉक्टर के जाते हैं? फिर आप देखिए यहाँ पे अला अन तो अलीमा नी था नी, लेकिन यहाँ पे या गिर गई क्यों? माँ कहते हैं इतना प्यारा नुक्ता है इसमें भी कि मूसा अलैहि सलाम इतने एक्साइटेड थे सीखने के लिए, इतने बेचैन थे सीखने के लिए कि तो अलीमा नी भी नहीं कहा, बस तो मनी मिम्मा वाले दारुशदा नहीं, वो बस बीच बीच जा रहे हैं और बेचैन है कि बस मुझे सिखा दे किसी तरह। सुभान अल्लाह, उनका शौक, उनका जज्बा, उनकी कमिटमेंट देखें तो सही। और किसमें से अलिमता रुशदा, रुशद में से, रुशद क्या होती है? सही फैसला करने की सलाहियत, समझ बूझ, रास्ती, हिदायत, खास इल्म है। इल्म का लफ्ज नहीं आया यहाँ पर, रुश्द का है, जिसमें भलाई हो, क्योंकि उलूम बहुत सारे हो सकते हैं। और यहां से इल्म का लेने का अदब भी हमें आया। अदब क्या होता है? क्योंकि इल्म का भी अदब होता है। इमाम शाफी ने इमाम मालिक से इल्म लिया, फिर उसके बाद जब इल्म ले लिया, हालांकि मौता इमाम मालिक, उनको याद थी इमाम शाफी को, जब अबे पढ़ने के लिए आए थे ना, उनकी अम्मी उनको लेकर आई इमाम मालिक के पास, तो उन्होंने पूछा भाई कुरान हिफ्स है ये है, तो सब हिफ्स है ये है, अशार भी कई आते थे, और उन्होंने कहा कि मेरे क्रिडेंशियल सबसे बड़ी तो बात यह कि मुझे मौता इमाम मालिक जो है मुझे जुबानी याद है। और फिर उसके बाद वहीं बैठे, फिर कई साल इल्म लिया, जब इल्म ले लिया तो लोगों ने, बाकी लोग तो चले गए, उन्होंने कहा कि आप क्यों ठहरे में अभी तक, आप क्यों अभी तक पढ़ना चाहते हैं, आपने इल्म ले तो लिया। फरमाया कि अब मैं इल्म का अदब सीख रहा हूं, ठीक है, मैं इल्म का अदब सीख रहा हूँ, इल्म अदब के साथ ही आता है। देखिए वो कहते हैं ना, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अगर आपके नजदीक टीचर की कोई अहमियत नहीं है ना, कोई हैसियत नहीं, वो आपको ऐसे लगता है ये क्या चीज़ है, इससे ज्यादा तो मुझे ही पता है, तो यकीन जाने आप 100 साल भी उस उस्ताद से सीखते रहेंगे, आपको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के बता दूं। तो इल्म के लिए, इल्म जिससे आप लेते हैं उसके अदब जरूरी है, जहां पे भी आप जाएं किसी किस्म का भी इल्म ले। और इतने बड़े पैगंबर भी अपने आप को कैसे उनके सामने बिछा रहे हैं, कैसे उनके सामने वो आजी का इजहार कर रहे हैं, और कहते हैं मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, मिन ये तबईजिया है, बाज उसमें से जो इल्म आपको सिखाया गया, यानी जो आपको सिखाया गया उसमें से, यानी एक इसका मतलब ये कि ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ ही मुझे इल्म दे दे, बस अब मुझे अपने जितना इल्म सिखाएं जितना आपके पास है, नहीं इसमें से मेहरबानी करके मुझे कुछ तो इल्म दे दीजिए। ये कितनी अदब की इसमें बात है। दूसरा ये कि जैसे अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये इनाम फरमाया कि आपको सिखाया, तो आप भी मेरे साथ मेहरबानी करें कि आप मुझे सिखा दें। और देख लें मूसा अलैहि सलाम ने एक बात कही थी सिर्फ कि मैं मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को दोबारा तालिब इल्म बना दिया, नहीं जाओ अभी और सीखना है तुम्हें। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका इल्म मुकम्मल हो। मैंने जैसे आपको बताया हज़रत अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं है, यानी मेरे पास नहीं है वो, और ना आपके पास जो इल्म है वो मेरे पास है, ना मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास है। तो इसलिए कोई भी मुकम्मल नहीं, आपके पास कितना भी इल्म हो फिर भी सीखने की और हर एक को जरूरत। सूरह यूसुफ में हम पढ़ नहीं रहे कि पढ़ा है हमने कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। इसलिए कभी अपने आप को ना सोचें कि मैं बहुत बड़ी आलिमा बन गई, मैं आलिमा, मैं फाजला, मैं पता नहीं क्या। बहुत सारे लोग तो अपने आप को आलिम कहलाते हैं, आलिमाएं कहलाती हैं। तो ऑलवेज इंसान को तालिब इल्म रहना चाहिए। और फिर ये बात भी उलमा ने कही है कि इल्म जो है ना, सीखना भी एक चीज और सिखाना एक और चीज है। यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम चाहते तो अपनी कौम के अंदर इल्म सिखाते रहते ना आते, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ के इल्म सीखने को अब ज्यादा तरजीह दी कि मैं सीखने जाना चाहता हूँ, और ना सिखाने वाले भी तो बन सकते थे, वहीं पे सिखाते रहते बस। और इससे पता चलता है, और लिमता रुशदा से पता चला ना कि ऐसा खास इल्म जो भलाई का इल्म हो, जो नफामंद इल्म हो, जो रास्ती वाला इल्म हो। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है ना मसनून दुआओं में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियान, अल्लाह मुझे नफामंद इल्म अता फरमा। क्योंकि बाज दफा इंसान ऐसे ही उलूम भी हासिल करता है जिनको कोई नफा नहीं है, ना दुनिया का को कोई फायदा तो ना आखरत का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म सीखो, और इल्म सीखने के लिए सकीनत और वकार इख्तियार करो, ठहराओ यानी अपने मिजाज में ठहराओ लाओ, और तवाजो इख्तियार करो यानी आजजी का मुजाहिरा करो। यह हदीस है। तो तवाजो के बगैर कैसे इल्म आ सकता है। उन्होंने क्या फरमाया, काला उन्होंने फरमाया किसने, खिजर अलैहि सलाम ने, इन्नक लन तस्ततिया माया सबरा, कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। इस साथ पता चला कि बाज दफा उस्ताद देख के ये भांप लेता है कि ये शागिर्द जो है ना ये वाला इल्म नहीं हासिल कर सकेगा, या वो ये, या शायद बाज मुफसरीन ने कहा कि शायद खजर अलैहि सलाम ने इसलिए ये फरमाया कि वो देखना चाहते थे मूसा अलैहि सलाम कितने कमिटेड है, या उनको पता था कि मूसा अलैहि सलाम के पास शरीयत का इल्म है, और खजर अलैह सलाम कई ऐसे काम करेंगे जो मूसा अलैह सलाम की शरीयत में मना है, तो फिर वो सबर नहीं कर सकेंगे। जैसे आप देखिए ना मूसा अलैह सलाम जब वो किब्ती के साथ वो बनी इसराइली शख्स लड़ रहा था, तो मूसा अलैह सलाम वहां पे खड़े हो गए, उस लड़ाई में कूद पड़े वो, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश शुरू कर दी, उनसे देखा नहीं जा सकता था कि कोई चीज गलत हो रही है तो वो मतलब उसके अंदर ना जाए और ना कुछ बोले, तो उनसे कैसे सबर होना था। उन्होंने कहा कि नहीं आपसे सबर नहीं हो सकेगा। और इससे हमें ये भी पता चला कि इल्म के लिए दूसरी क्या चीज जरूरी है, सबर। अभी तक आपको इल्म के क्या आदाब पता चले, अपने उस किसी उस्ताद से इल्म सीखना, ये भी पता चला कि उस्ताद की ओबीडियंस करना कि जो वो बात कहे उसको मानने तो सही, ये नहीं कि हमने नहीं माननी। ये भी पता चला कि इसके अंदर इल्म नाफे के लिए इल्म तलब करना और फिर इल्म के लिए तवाजो इख्तियार करना, आजी करना, वो इजाजत ले रहे हैं बड़ी रिस्पेक्टफुली। और फिर ये कि सबर, अगर आप कहें कि मैं पहले दिन ही आई हूं, मुझे सारा कुछ सिखा दे, तो नहीं हो सकता। जो हमारा पहला कोर्स था उसमें आज तक मुझे याद है, हमने सूरह फातिहा शुरू की तो स्टूडेंट्स ने इतने, उसके बाद सवाल जवाब का जब सेशन हुआ, इतने सवाल पूछे, अच्छा ये बताएं कि ये क्या होता है, वो बताएं, वो यानी वो अभी बात आई नहीं, अभी सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह चल रही है और वो बनी इसराइल का पूछ रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं। तो इल्म सबर के साथ आता है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ जब कोर्स शुरू होता है कि आप लोग अपने सवालात एक जगह लिख लें, जब कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप देखें कि आपके उन सवालात के जवाबात आपको मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ना, आप उसके लिए आपको सबर करना पड़ा, इतनी अरसा पढ़ना पड़ा। और अगर कहें कि भाई आज ही बस हलवा बना के हमें खिला दें और एक दिन में ही हमें बस सारा आ जाए और बस हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम नहीं इतना सबर कर सकते, ये नहीं फिर इल्म आएगा। वह कैफा तस्विर वाला मालम तो हित भी है खुबरा, और आप सबर करेंगे भी कैसे? अब वो उनको खुद एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आप खुद कैसे सबर करेंगे इस बात पे जिसकी आप अहाता ही नहीं कर सकते, उसकी पूरी खबर कर, उसकी पूरी समझ का, यानी एक चीज के कई एंगल्स होते हैं ना, तो आप अहाता नहीं कर सकेंगे, आप एक साइड से देखेंगे वो आपको गलत लगेगी, तो उसके ऊपर फिर आप सबर कैसे करेंगे? तो है तो भी यही, इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। ये नहीं कहा गया कि आप उसके ऊपर जो आपको पता नहीं है, नहीं, अहाता नहीं जिसका आप कर सकते, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी। पूरी अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हर एंगल से चीज को देखा जाए और समझा जाए। हम दुनिया में सिर्फ एक एंगल से देखते हैं ना, अपनी जाहिरी आंख से देखते हैं, हमें उसके बातिन में छुपी हुई चीज नहीं समझ आती, लेकिन वो भी उसका एक एंगल है ना। तो ये भी एक अच्छे उस्ताद की एक निशानी है कि वो अपने स्टूडेंट के शूज में आके देखे कि इसके क्या मसले हैं, इसको ये क्या, किस किस चीज से दो चार हो सकता है, किस परेशानी से दो चार हो सकता है, तो उसकी मुश्किल को समझ के फिर इस तरह उसको एड्रेस करे। उन्होंने ये नहीं फरमाया तुम कहाँ सबर करोगे, कहाँ तुम्हारे अंदर इतना सबर है। बाज लोग इस तरह स्टूडेंट्स को पुट ऑफ कर देते कि जब वो उनको डिस्करेज करते हैं, जब उनके साथ हार्श होते हैं, जब उनको कहते तुम्हें कहाँ आएगा, तुम नहीं सबर कर सकते, अरे कहाँ तुमसे सबर होगा, छोड़ो तुम्हारे बस का काम ही नहीं है, ऐसे नहीं कहा, बल्कि आई अंडरस्टैंड, जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि तुम सबर कर रहे हो कि भाई कैसे, तुम्हारी ताकत में ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उन चीजों की। अब मूसा अलैहि सलाम तो डिटरमिंड है कि मैंने सीखना ही सीखना है, वो ये नहीं कह सकते वाकई अगर इतना ही मुश्किल काम है तो भाई मैं तो जा रहा हूं वापस, अच्छा इतना मुश्किल है, उसमें इतना सबर करना पड़ेगा, ये हमसे तो नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं ना, अच्छा और ये भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छा तर्जुमा भी याद करना पड़ेगा, ये तो नहीं हमसे हो सकता भाई, ठीक है हम तो नहीं, हम सुन लेंगे लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते भाई, स्टूडेंट के तौर पे नहीं आ सकते, मुझे स्टूडेंट ही बन रहे हैं। अब वो ये नहीं कहते तो क्या हुआ, मैंने तो आपके साथ साथ ही चलना है ना, वॉच ही करना है ना, वॉच एंड लर्न ही करना है, इसमें सबर की क्या बात होगी, नहीं, वो आगे से अपनी पूरी फुल कमिटमेंट दिखाते हैं, यानी अपने उस्ताद को वो खुश कर देते ये कह के सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, मैं इंशाअल्लाह, यानी अपने ऊपर भरोसा करके नहीं, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं साबिरा, साबिरा जो है ना वो इसम फाइल है, इसमें बहुत ज्यादा सबर, यानी जो इंसान सबर ही करने वाला, सबर का एक मजमुआ होता है वो करने वाला, तो मैं आपको सबर करने वाला मिलूंगा, यानी मेरे आप मुझे ऐसा पाएंगे, बोला आसी लक अमरा, मैं आपकी नाफरमानी तो करूंगा ही नहीं किसी हुक्म में भी नहीं। आप देखें फरमा बरदारी की बात समझ आई ना, कौन कह रहा है, यूशा बिन नून नहीं कह रहे, मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं, वो तो होते तो फिर भी चलो एक नौजवान थे और एक लड़के थे, इनके खातिन थे, इतने बड़े पैगंबर, अब थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैंने आपको शुरू में मूसा अलैहि सलाम का एक दफा दोबारा याद दहानी कराई उनके मकाम और उनके मर्तबे की, कि कितनी बड़ी हस्ती है मूसा अलैहि सलाम, और जिसके साथ जमीन पे अल्लाह ताला खुद बात कर ले, आप बताएंगे किसी और के साथ भी नहीं, अल्लाह ताला ने जमीन पे बात की। आप सरसरम मेराज पे गए थे, वहां पे कलाम किया, इस जमीन पे सिवाय मूसा अलैहि सलाम के किसी और के साथ अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात नहीं की। वो मूसा है जो कह रहे हैं मैं आपकी कोई बात रद्द नहीं करूंगा। तो इससे उस्ताद की ताजीम, उनका अदब, उनके सामने कैसे एक शागिर्द को होना चाहिए, वो ये पता चलता है हमें। असल में आज के दौर में ऐसा है कि कोई भी इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं कि मुझसे ज्यादा किसी के पास इल्म हो सकता। सारे कहते हैं हमें ये क्या चीज़ है, वो चीज़ ही नहीं है, मुझे सारा कुछ पता है, मैंने क्यों किसी से पढ़ना, या चलो पढ़ भी लेता हूँ लेकिन इतना भी क्या। हालांकि हज़रत अली फरमाते हैं ना कि जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीख लिया मैं उसका गुलाम हूँ, एक लफ्ज़ भी, सुभान अल्लाह। तो और यहाँ पे देखिए इंशाअल्लाह कहते हैं, इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह को हमने इस सूरत में पहले भी देखा कि जब किसी काम का इरादा करो तो इंशाअल्लाह को, और यहाँ प्रैक्टिकली बता दिया गया कि अल्लाह के पैगंबर भी इंशाअल्लाह कहते थे। काला, अब उन्होंने एक शर्त रख दी खदीर अलैहिस्सलाम ने, फाइनी तबातनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता ओहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। उन्होंने कहा फिर अगर तुम मेरी पैरवी करते ही हो तो फिर देखना मुझसे कुछ सवाल ना करना किसी चीज के बारे में, जब तक मैं तुम्हें खुद ना बयान कर दूं इसका, खुद ना जिक्र कर दूं, यानी मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं। ये मेरी शर्त है मेरे साथ रहने की कि आपको ये करना पड़ेगा कि आप बीच बीच में मुझसे नहीं पूछेंगे। देखिए ना आप खुद भी वैसे भी देखें कोई भी कोई काम कर रहा हो, मसलन अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, अब आप बीच में अगर सवाल करना शुरू कर दें तो क्या लेक्चर मुकम्मल हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अब उन्होंने कहा कि आपने मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, यही उनकी एक ही शर्त थी। और इससे पता चलता है कि उस्ताद कोई शर्त रख सकता है अपनी पढ़ाने के लिए, मसलन है कि आप होमवर्क करके आया करेंगे, आप ये किया करेंगे, ठीक है।